इसको खोलो, देखो तो करो कहाँ तक आ रहे हैं। इसको
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी हे राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी उपजन वल्लभ Yeah. कृष्ण वल्लभ
आचार्य अष्टोदर्शक श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोदर्शक श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। काफी समय से महाभारत के विषय पर चर्चा हो रही है और अब तक हम लोग युद्ध के प्रारंभ तक पहुंच चुके हैं कि अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। पिछली बार चर्चा हम लोग कर रहे थे कि कैसे युयुत्सु को दुर्योधन ने अपने सेना से बाहर निकाल दिया। रुक्मी भी आए थे, पांडवों के पास भी गए, कौरवों के पास भी गए, लेकिन रुक्मी को दोनों ने स्वीकार नहीं किया। रुक्मी जो रुक्मिणी के भाई हैं, पांडवों ने स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे कृष्ण के विरोधी हैं, और दुर्योधन ने स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि पांडवों ने उनको नकार दिया था। तो ये सारी कथाएं हम लोग सुन चुके हैं और अब वो समय है जब युद्ध प्रारंभ होना है। रात्रि के समय भीष्म देव, अब तो ये था कि अगले दिन युद्ध होना है, निश्चित हो चुका था, तो भीष्म देव बड़े चिंता में थे। वो ये सोच रहे थे कि वो जिस कार्य को करने जा रहे हैं क्या वो धर्म है या नहीं है। एक तरफ उनकी प्रतिज्ञा है कि उन्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसमें अपने पिता को देखना है, उनके आदेश को अपने पिता का आदेश मानना है, हस्तिनापुर की रक्षा करनी है। दूसरी ओर धर्म और अधर्म की बात है कि जिस व्यक्ति को वो अपने पिता के रूप में मान रहे हैं राज सिंहासन पर बिठाकर, वो अधर्म का साथ दे रहा है। और क्योंकि उन्होंने केवल भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, या कहना चाहिए कि उनका नमक खाया है, तो इसीलिए उन्हें अधर्म का साथ देना है, धर्म के विरुद्ध युद्ध करना है। तो भीष्म के लिए बड़ी दुविधा की बात थी, वे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें या फिर धर्म को छोड़ दें, दोनों ही कठिन था। इस समय प्रायः 400 वर्ष की उम्र हो चुकी थी भीष्म देव की, और इन 400 वर्षों तक उन्होंने बड़ी कड़ाई से इस प्रतिज्ञा का पालन किया था। राज सिंहासन पर वो बैठे नहीं, उन्होंने राजा को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, और साथ ही साथ हर समय हर क्षण हस्तिनापुर की रक्षा की। लेकिन वो उनके लिए धर्म था। आज अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए वे अधर्म का पालन कर रहे हैं, या अधर्म का साथ दे रहे हैं। पालन तो नहीं कर रहे लेकिन साथ दे रहे हैं। और एक अधर्मी का साथ देने वाला व्यक्ति भी अधर्मी माना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है तो उसमें जो भी लोग सहयोग करते हैं उन सबको दंड मिलता है। इसी प्रकार जो अधर्म का पालन कर रहा है अगर कोई व्यक्ति उसका साथ देता है तो वो भी अधर्मी कहलाता है। और इस दृष्टि से आज भीष्म देव अधर्मी हो गए हैं क्योंकि वो अधर्म को पालन करने वाले का साथ दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दुविधा है। और कौन है भीष्म देव? परशुराम जी के शिष्य, बृहस्पति के शिष्य, कुरु वंश के इतने वरिष्ठ योद्धा, इतना सब होते हुए उन्हें अधर्म का साथ देना है, देखिए कितनी दुविधा है। कभी कभी जो व्यक्ति ऊंचे पद पर होता है उसके लिए दुविधाएं भी बड़ी होती हैं। जो सैनिक लड़ रहे थे दुर्योधन की तरफ से उन्हें ये दुविधा नहीं थी क्योंकि ना तो वो बृहस्पति के शिष्य थे, ना परशुराम जी के शिष्य थे, ना ही कुरु वंश के बहुत वरिष्ठ बड़े ही नामी योद्धा थे, और ना ही वो धर्म की रक्षा करने वाले कोई महान व्यक्ति थे। लेकिन भीष्म के लिए बहुत दुविधा थी। इसीलिए कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर है वो बड़े आनंद का अनुभव कर रहा है, उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे छुपे हुए जिम्मेदारी को देख नहीं पाते, उसके पीछे छुपे हुए उनकी दुविधाओं को देख नहीं पाते। जैसे भीष्म, दिखने में तो सभी कह रहे हैं कि वाह ये भीष्म प्रमुख सेनापति हैं, इतना बड़ा पद उनको मिला है। प्रमुख सेनापति का अर्थ होता था जो वो कहेंगे वो होगा, तो इतना बड़ा पद मिला है कौरवों के राज्य में, लेकिन दुविधा भी बहुत थी। और इसीलिए रात्रि के समय भीष्म ने सोचा कि मुझे अपना देह त्याग कर देना चाहिए। क्यों? अधर्म के ओर से लड़ने से अच्छा है। लेकिन वो दुविधा में थे, योग क्रिया से वो उसी समय अपने देह को छोड़ सकते थे, भीष्म में ये शक्ति थी, लेकिन उनके मन में दुविधा थी कि मुझे अभी मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैं युद्ध करने जा रहा हूं इस बच्ची को या तो कहीं एक जगह बिठा दें या कहीं बाहर ले जाएं, उसके पांव में सर वो कुछ है जहां चलती है बहुत आवाज करती है, ठीक है एक जगह बैठी रहे तो ठीक है। तो भीष्म देव के लिए दुविधा थी कि क्या करें, और अंततः भीष्म देव ने सोचा कि अगर मैंने अभी अपना देह त्याग दिया तो मैं दुर्योधन के नमक का ऋण नहीं उतार पाऊंगा क्योंकि मैंने उससे अर्थ धन लिया है। ये बात अगले दिन युधिष्ठिर को बताने वाले हैं भीष्म देव कि क्यों वो युद्ध कर रहे हैं। तो रात्रि में उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे युद्ध करना है ताकि मैं ऋण उतार सकूं दुर्योधन का, नहीं तो अगर मैं यहीं मर गया तो मैं दुर्योधन का ऋण लेकर मरूंगा साथ में, क्योंकि उससे मैंने धन लिया है, उसने मुझे पाला है, वो राजा है या राज्य का अधिकारी है तो उसके कारण मेरा पालन पोषण हुआ है। तो इसीलिए भीष्म देव ने निर्णय किया कि मुझे युद्ध करना चाहिए। तो अब अगला दिन प्रारंभ हुआ। ये दिन था जिस दिन भगवान ने भगवद गीता कही, मोक्षदा एकादशी का दिन। वैसे जो सेनाएं थीं वो कार्तिक के महीने में ही कुरुक्षेत्र के स्थल पर आ गई थीं। पांडवों की जो सेना थी वो बहुत बाद में आई थी, कौरवों की पहले आ गई थी। जानबूझकर पांडवों ने अपनी सेना जो उनके साथी इत्यादि थे उनको एक साथ नहीं रखा था ताकि पता नहीं चले, क्योंकि अंत तक इसीलिए दुर्योधन को पता नहीं था कि कितनी शक्ति है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को सब पता था युधिष्ठिर को सारी सूचना थी कितनी अक्षौणी सेना आ रही है दुर्योधन की, कौन कौन लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने साथ एक छोटी सी टुकड़ी रखी थी सेना की जहाँ पर वे थे, और बाकी सेनाओं को उन्होंने आदेश दिया था कि आप अलग अलग, साथ में नहीं आना, अलग अलग रूप से आप कुरुक्षेत्र में पहुंचिए। तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन से ही ये प्रारंभ हो गई थी सेनाएं आना, लेकिन युद्ध हुआ प्रायः 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद युद्ध प्रारंभ हुआ, और वो था मोक्षदा एकादशी का दिन, जो भी बहुत जल्दी अगले महीने में, कुछ ही दिनों में अब आने वाला है, जिस दिन भगवान ने भगवद गीता कही। तो अब पहला दिवस युद्ध का, युद्ध प्रारंभ होना है उस तरफ हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र, उन्होंने, वो तो बड़ी चिंता में थे, स्वाभाविक है धृतराष्ट्र चिंता में होंगे ही, तो उन्होंने संजय को बुलाया। अब वो जानना चाहते थे क्या हो रहा है, तो उन्होंने संजय से पूछा कि संजय, क्या पांडव इतने अधर्मी हो गए कि वो अपने ही वरिष्ठों को मारने के लिए तैयार हैं? द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं, भीष्म जो उनके वरिष्ठ हैं, क्या इतना अधर्म बढ़ गया? देखिए धृतराष्ट्र का प्रश्न, क्या इतना अधर्म बढ़ गया, इतना अधर्म उनके मन में आ गया कि कुछ भूमि के टुकड़े के लिए अपने ही वरिष्ठों को, अपने ही गुरु को मारने के लिए तैयार हो गए पांडव? तो ये निश्चित हो गया, मतलब ये पूछ रहे थे धृतराष्ट्र कि अभी भी क्या ऐसा हुआ कि कहीं युधिष्ठिर छोड़कर चला तो नहीं गया युद्ध को? तो अभी भी उनको आशा थी अंत तक कि शायद युधिष्ठिर चला जाए। उन्होंने तो संदेश भी भेजा था, जिस समय इनके 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ, और फिर दोनों जगह बातें होने लगी और अंत में ये होना था कि निश्चित युद्ध होगा, तो धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा था युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर जो साधु होते हैं वे द्वेष नहीं करते हैं। एक द्वेषी व्यक्ति संदेश भेज रहा है, इसीलिए प्रभाव नहीं हुआ। देखिए हमारे संदेश का लोगों के हृदय में प्रभाव तब होता है जब हम उस चीज़ का पालन करते हुए उस बात को कहते हैं। अगर हम पालन नहीं करते हैं, हम दूसरों को केवल प्रचार करते हैं, आचार नहीं है हमारा, तो फिर प्रभावी नहीं है वो बातें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते जन्म है गजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। दूसरों का उपकार करने से पहले हमें अपने जन्म को सार्थक करना है, अर्थात दूसरों को उपदेश देने से पहले हमें उसका अपने जीवन में पालन करना चाहिए, तब चीज़ें प्रभावी होंगी। अन्यथा केवल लोग आएंगे, थोड़ा बहुत आनंद लेंगे, मनोरंजन होगा, और किसी का हृदय नहीं बदलेगा। भक्ति का अर्थ है हृदय परिवर्तन, सच्चा प्रचार है जहां हम व्यक्ति के हृदय को बदलें। केवल बहुत सारे, जैसे हम लोग देखते हैं ऐसे कई लोग हैं जो पालन करते हैं, बहुत सारे प्रचार करते हैं, उनके प्रचार में हजारों लोग आते हैं, उनका एक एक कहीं प्रवचन होता है, हजारों लोग उनकी सभा में आते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति का हृदय नहीं बदलता। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि व्यक्ति खुद उस चीज़ का पालन नहीं करता। इसीलिए हमें दूसरों को कुछ कहने से पहले खुद पालन करना चाहिए। कभी कभी हमारे संबंधों में भी गिरावट आ जाती है, और उसका कारण यही है, व्यक्ति खुद पालन नहीं करता लेकिन दूसरे से आशा करता है कि उसे वो कार्य करना चाहिए। तो फिर जब दूसरा व्यक्ति देखता है कि अरे ये खुद ही पालन नहीं करता तो मुझसे क्यों आशा कर रहा है, इसीलिए हृदय नहीं बदलता। और यही बात धृतराष्ट्र के लिए है। धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा, साधु जो होते हैं वो द्वेष नहीं करते, और तुम तो युधिष्ठिर इतने बड़े साधु हो, इसीलिए तुम्हें राज्य की कामना नहीं करनी चाहिए। ठीक है दुर्योधन इत्यादि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें वन में चले जाना चाहिए। धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा, तुम्हारे लिए अच्छा है वन में चले जाओ। ये सब राज्य की कामना, ये साधु पुरुषों के लिए नहीं। तो इसीलिए अब आज के दिवस पर जब युद्ध होने वाला है, तब भी धृतराष्ट्र यही सोच रहे हैं कि हो सकता है मैंने जो संदेश भेजा था मेरे प्रिय युधिष्ठिर को, तो हो सकता है वो स्वीकार करके शायद वन में चला गया हो। इसीलिए संजय से पूछ रहे हैं कि क्या सही में पांडवों ने निर्णय ले लिया इस अधर्म को करने का? केवल कुछ जमीन के टुकड़े के लिए अपने वरिष्ठों को मार रहे हैं, गुरु को मार रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधर्म बहुत बढ़ गया है, धृतराष्ट्र कह रहा है। फिर उसने कहा, उसके मन में प्रश्न आया होगा कि संजय कहेगा महाराज धर्म तो आप भी कर रहे हो, आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि यह ऐसा है कि हम लोग भी अपने वरिष्ठों को मृत्यु के मुख की ओर भेज रहे हैं अपने कर्तव्य के पालन के लिए। जब पांडवों की बात आती है तो वो कहते हैं अधर्म पालन हो रहा है, लेकिन जब अपनी बात आती है कि आप भी तो मरवा रहे हो भीष्म को, आप भी तो मरवा रहे द्रोणाचार्य को, तो कर्तव्य पालन के लिए, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। तो संजय समझ गए और संजय ने उन्हें बहुत डांटा। देखिए एक सच्चा मित्र, एक सच्चे सेवक का कार्य ये नहीं होता कि केवल स्वामी की हाँ में हाँ मिलाए, मित्र की हाँ में हाँ मिलाए, हाँ जो तुम कह रहे हो सही है। संजय ने कहा आपको धर्म की बात नहीं करनी चाहिए महाराज, क्योंकि ये जो सारा युद्ध हुआ है इसके दोषी भीष्म नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं है, और पांडवों को तो आपको दोष देना ही नहीं चाहिए, वे तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, उनके लिए ये तो अंतिम उपाय था। वो क्या करते, उनको तो जबरदस्ती इस युद्ध में डाला गया है, इसलिए उनकी तो उनको तो आप दोष दीजिए नहीं, और भीष्म द्रोणाचार्य इन पर भी दोष नहीं आता है, और महाराज ये भी जान लीजिए दोष दुर्योधन पर भी नहीं आता है, केवल आपके ऊपर है दोष, क्योंकि आप चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। दरअसल ये कहकर संजय धृतराष्ट्र से ये कहना चाह रहे थे कि महाराज अभी भी समय है, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, आप रोक सकते हैं। क्योंकि राजा थे, अगर धृतराष्ट्र एक घोषणा कर देते कि युद्ध नहीं होगा, आधा राज्य जो युधिष्ठिर का है उसको दे दिया जाए, आधा राज्य दुर्योधन को दे दिया जाए, युद्ध बंद हो जाए, उसी समय युद्ध बंद हो जाता है, कोई विरोध नहीं कर सकता था, और अगर दुर्योधन विरोध करता तो भीष्म और द्रोण उसको मार डालते, क्योंकि राजा का विरोध कर रहा है, तब वो मार सकते थे, अब नहीं मार सकते थे क्योंकि राजा के साथ चल रहा है। तो संजय ने कहा कि महाराज सारा दोष आपका है, आप ही के कारण ये युद्ध हो रहा है, और ये मत सोचिए कि जो भी पहले हुआ, पांडवों का अपमान, पांडवों को वनवास, आपकी पुत्र वधु का अपमान, इस सब का दोष आपके ऊपर है महाराज। देखिए एक राजा के लिए, जैसे हम बता रहे थे कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है किसी पद को लेना, क्योंकि जितने भी वहां पर अन्याय अधर्म हुए उस सब का दोष राजा पर गया। क्यों? क्योंकि उसके राज्य में ये हुए और उसने विरोध नहीं किया, उसने बंद नहीं किया। मनुसंहिता में कहा गया है कि एक राजा की प्रजा जितने पाप करती है उसका एक छठा भाग राजा को जाता है, अर्थात जो व्यक्ति प्रमुख है, जो किसी स्थान का प्रमुख है, उसके अधीन रहने वाले अगर पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, तो उसका फल उसको मिलता है। तो राजा बनना कोई बहुत आसान कार्य नहीं है, राजा को पापों का फल लेना होता है, राजा भागी होता है, और इतना ही नहीं राजा के पुण्य का फल प्रजा को मिल जाता है। पाप राजा को मिलते हैं और पुण्य प्रजा को मिलते हैं। राजा अगर पुण्यवान हो तो प्रजा को उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए सारा दोष आपका है महाराज, संजय कहने लगे। ये सुनकर धृतराष्ट्र दुखी हो गए और उन्होंने व्यासदेव का स्मरण किया कि व्यासदेव को बुलाया। व्यासदेव आए, व्यासदेव तो जानते हैं, व्यासदेव तो हृदय की बात समझते हैं, तो वो जानते थे कि क्या सुनना चाहता है। धृतराष्ट्र उस समय सुनना चाहते थे कि धृतराष्ट्र तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सारा युद्ध ये पांडवों की वजह से हुआ है, ये दुर्योधन की वजह से, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम निर्दोष हो, ये सुनने के लिए उसने व्यासदेव को बुलाया। लेकिन व्यासदेव तो सत्य कहते हैं, उनके मुख से निकला हुआ हर वाक्य सत्य है, क्योंकि व्यासदेव इस समय के जो व्यासदेव हैं वो स्वयं नारायण हैं। कभी कभी व्यास वैसे एक पदवी है, व्यासदेव व्यक्ति का नाम नहीं है। तो कभी कभी इस पदवी के लिए, इस पद के लिए जब योग्य व्यक्ति नहीं मिलता भगवान को, तो भगवान स्वयं उस पद को स्वीकार करते हैं। जैसे ब्रह्मा का पद या किसी अन्य देवता का पद, जब भगवान को योग्य व्यक्ति नहीं मिलते ब्रह्मा जी के पद के लिए, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। तो कभी कभी भगवान भी ब्रह्मा हो सकते हैं, लेकिन साधारणतः जैसे इस समय के जो हमारे ब्रह्मा हैं वो जीव हैं, वो भगवान नहीं है। लेकिन व्यासदेव नारायण है, ऐसा वर्णन पुराणों में किया गया है। तो व्यासदेव प्रकट हुए और उस समय व्यासदेव ने उनसे कहा, सारा वर्णन किया, और व्यासदेव ने भी वही कहा कि दोष तुम्हारा है, तुमने रोका नहीं। तो खैर अंत में व्यासदेव ने उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दृष्टि प्रदान कर देता हूं, तुम यहीं बैठे बैठे सब देख सकोगे। उससे पहले प्रश्न किया था धृतराष्ट्र ने व्यासदेव से कि आप मुझे बताइए कि क्या ये जो युद्ध है इसका क्या परिणाम होगा, और व्यासदेव ने कहा था तुम्हारे पुत्रों का काल आ गया। और अब जब व्यासदेव ने कहा कि धृतराष्ट्र अगर तुम चाहो तो तुम्हें दृष्टि प्रदान कर दूंगा, यहीं बैठे बैठे तुम सारा युद्ध देख सकोगे, उसने मना कर दिया। उसने कहा मैंने अपने पुत्रों को जीवित नहीं देखा कभी, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं देख नहीं पाया, और अब मैं उनके मरे हुए शरीर को नहीं देखना चाहता। देखिए इससे हमें पता चलता है कि हमारी आसक्ति कितनी तीव्र हो सकती है। धृतराष्ट्र ये जानते हुए कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे युद्ध को रोक नहीं रहा है। व्यासदेव ने कह दिया काल आ गया है तुम्हारे पुत्र, जानते हुए उसने नहीं रोका। क्यों? सिंहासन से आसक्ति, राज्य से आसक्ति। वो सोच रहा था कि हो सकता है मेरे पुत्र मारे जाएं, हो सकता है नहीं मरे, और अगर मारे भी जाएं हो सकता है पांडव भी मर जाएं। तो अगर मेरे पुत्र मर गए और पांडव भी मर गए तो राजा कौन बनेगा? और मान लीजिए कि पांडव जीवित भी रहें, मेरे पुत्र मर जाएं, लेकिन मेरा युधिष्ठिर इतना प्रेम करता है मुझसे, मैं नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन युधिष्ठिर बड़ा प्रेम करता है, तो अगर वो जीत भी गया तो वो मुझे राजपद से नहीं हटाएगा, जैसे उसके पिता ने नहीं हटाया मुझे कभी, राज्य तो उसके पिता का था। लेकिन पांडु महाराज कभी बैठे नहीं सिंहासन पर, उन्होंने हमेशा वो चले जाते थे बाहर घूमने, चले घूमने मतलब वो राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए राजा बनने के बाद। फिर जब वापस भी आए तो उसके बाद वन में चले गए आखेट के लिए, जानबूझ के वो चाहते थे कि धृतराष्ट्र बैठे रहे, क्योंकि वो रहेंगे तो फिर स्वाभाविक है वो राजा है, उनको बैठना होगा सिंहासन पर। तो सोच रहा था कि जैसे इनके पिता ने मेरे प्रति प्रेम दिखाया ये भी दिखाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं आंखें नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं युद्ध के विषय में जरूर जानना चाहता हूँ क्या हो रहा है। तो उस समय व्यासदेव ने संजय को विशेष दृष्टि प्रदान की। उन्होंने संजय से कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दृष्टि प्रदान करता हूँ कि तुम यहीं बैठे बैठे या जहाँ भी युद्ध के समय भी अगर तुम युद्ध भी कर रहे होगे तो उस समय भी तुम सब कुछ देख सकोगे। और सब कुछ मतलब जहाँ जिस स्थान पे हो वही नहीं, पूरे युद्ध को देख सकोगे कहाँ क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, तुम लोगों की बातें सुन सकोगे। और इतना ही नहीं, तुम उनके मन में क्या चल रहा है ये जान सकोगे। देखिए कितनी शक्ति संजय को दी है। इससे ये भी पता चलता है हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ा हुआ था पहले। अब तो हम लोगों को शरीर में कुछ देखने के लिए वो रेज घुसानी पड़ती है, मशीन लगानी पड़ती है, तब पता चलता है कि क्या है अंदर। और वो भी लेकिन उससे ये नहीं पता चलता कि मन में क्या चल रहा है। ऐसी कोई मशीन अभी तक बनी नहीं है कि आप लगा दो तो सारे मन के विचार बाहर आ जाएंगे। लेकिन व्यासदेव ने बस ऐसे ही शक्ति प्रदान कर दी कि संजय तुम देख सकोगे और कहीं भी पूरे युद्ध में। और अब सोचिए, युद्ध क्षेत्र छोटा सा नहीं था, ऐसा नहीं था कि इतना जो कमरा है यहाँ पर युद्ध हो रहा था, कई किलोमीटर्स में फैला हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र था। अर्थात इतना बड़ा था कि अगर युद्ध करते करते अर्जुन कहीं दूर निकल जाता था तो उसको वापस आते आते शाम हो जाती थी, जैसा अभिमन्यु के वध के समय हुआ। तो इसीलिए इतना बड़ा होगा, सोचिए रथ पर जब अर्जुन का रथ जाएगा इतना दूर निकल गया कि वापस आते आते शाम हो जाए। तो सारे जहां पर भी युद्ध चल रहा है तुम देख सकोगे और तुम वर्णन कर सकोगे धृतराष्ट्र को। तो ये उन्होंने शक्ति दी और फिर व्यासदेव वहां से चले गए। और फिर अब ये समय आया जब युद्ध प्रारंभ होना था। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता का प्राकट्य, भगवद गीता के वो 700 श्लोक। 700 श्लोकों में से एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है भगवद गीता का। और करीब 574 श्लोक ये श्री कृष्ण ने कहे हैं। अर्जुन ने केवल 84 श्लोक कहे हैं इस पूरी भगवद गीता में। तो अब ये 700 श्लोकों का सबसे महत्वपूर्ण भाग महाभारत का अब प्रकट करते हैं व्यासदेव, जिसके लिए उन्होंने सारी महाभारत को रचा, जिसके लिए श्री कृष्ण ने इतना बड़ा रचना की। तो वो प्रारंभ होती है जब अब युद्ध के लिए सब तैयार हो गई, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। और ये वो समय था जब संजय ने वर्णन करना प्रारंभ किया कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि यही प्रश्न किया। अब संजय को दृष्टि मिल गई, अब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्रों ने, मामकः और पांडु के पुत्रों ने, पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत, क्या किया? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये कोई प्रश्न है। अरे दोनों योद्धा सामने खड़े हैं युद्ध करने, तो वो क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे, तो ये पूछने के लिए क्या बात, क्या आवश्यकता है कि ये क्यों पूछा धृतराष्ट्र ने कि क्या किया? अरे क्या किया, युद्ध करेंगे, स्वाभाविक है, युयुत्सव, युद्ध करने के काम ही हैं, युद्ध करने आए हैं, युद्ध करेंगे। तो खैर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। अब भगवद गीता प्रारंभ होती है। महाभारत का महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए हम लोग हर सोमवार को एक एक अध्याय पर, क्योंकि एक एक श्लोक पर चर्चा करने से तो बहुत समय चला जाएगा, महाभारत आगे नहीं बढ़ पाएगी। वैसे ना बढ़े अच्छा है, क्योंकि भगवद गीता बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक एक अध्याय पर चर्चा करेंगे। पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, क्या संबंध है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे ताकि थोड़ा बहुत भगवद गीता का ज्ञान भी हमें हो जाए। तो पहला अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें प्रारंभ के 10-11 श्लोकों में संजय वर्णन करते हैं कैसे दुर्योधन अपनी कूटनीति प्रकट करते, कैसे दुर्योधन भीष्म को बिना अपमान किए भीष्म का द्रोणाचार्य को सराहना करते हैं, लेकिन भीष्म की भी करते हैं, तो कूटनीति है। तो पहले 11 श्लोकों में वर्णन है, तो संजय वर्णन करते हैं कि किस प्रकार दोनों सेनाएं हैं और दुर्योधन अब द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। तो दुर्योधन जाते हैं कैसे, राजा के भाव में, राजा वचनम अब्रवीत। राजा जाकर क्या कहते हैं, वचनम क्या कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिं चमूं। हे आचार्य देखो, सामने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है तुम्हारे शिष्यों ने। क्यों ये कहा दुर्योधन ने, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था, उसको पता नहीं था कि इतनी बड़ी सेना आ सकती है। वो सोच रहे थे ठीक है पांडवों के साथ द्रुपद महाराज होंगे, विराट के नरेश होंगे, और कौन होगा, थोड़े बहुत इधर उधर के लोग होंगे, थोड़ी सी सेना लेकर आएंगे, ये वनवासियों को कौन मदद करेगा। लेकिन जब उसने सेना देखी दुर्योधन घबरा गए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दुर्योधन घबरा गए सेना को देखकर। कई आचार्यों ने वर्णन किया कि अर्जुन और भीम की इस सेना को देखकर इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास गए, अन्यथा एक राजा कभी किसी सेनापति के पास नहीं जाता। वो तो प्रमुख सेनापति भी नहीं थे उस समय द्रोणाचार्य, लेकिन घबरा कर गए। राजा बहुत कम अवस्था में अपने सेनापति के पास जाता है, और यहां तो वो राजा था। इसीलिए देखिए भगवद गीता के कितने महत्वपूर्ण श्लोक, राजा वचनम अब्रवीत, राजा कह रहे हैं लेकिन वो जा रहा है अपने सेनापति के पास। क्यों, घबरा गया, इतनी बड़ी सेना, इतनी विशाल सेना। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए। वैसे तो प्रमुखतः 18 अक्षौणी सेना थी, 11 दुर्योधन की तरफ और 7 पांडवों की तरफ, लेकिन इनके अलावा कई वीर और योद्धा थे, कई योद्धा थे जो मारे गए, करोड़ों लोग मरे इसमें। बहुत बड़ा युद्ध था, विश्व युद्ध था ये, क्योंकि सारे विश्व से राजा आए थे इसमें भाग लेने के लिए। कोई विश्व का ऐसा स्थान नहीं था जहां का राजा नहीं आया था भाग लेने। तो उस समय दुर्योधन घबरा गए इतनी बड़ी सेना को देखकर, इसीलिए गए द्रोणाचार्य के पास, और जाकर उन्होंने कहा कि देखिए इतनी बड़ी सेना खड़ी की है किसने, तव शिष्येन धीमता, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। द्रुपद का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न, वो प्रमुख बना था। दरअसल युद्ध के एक दिन पहले पांडवों को ये सूचना मिली कि उस जगह पर भीष्म को प्रमुख सेनापति बनाया गया है। तो अब ये लोग सब बैठे हैं, इनको चर्चा करनी है, तो भीष्म देव प्रमुख सेनापति हो गए, वैसे भी होने वाले थे, सब आशा तो कर ही रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब हमें भी किसी प्रमुख सेनापति को चुन लेना चाहिए आपस में। तो वहाँ युधिष्ठिर बैठे थे, साथ में द्रुपद महाराज थे, विराट नरेश थे, अन्य सारे उनके भाई इत्यादि थे, श्री कृष्ण थे। तो प्रश्न आया किसको चुनना चाहिए, तो सहदेव ने पहले कहा कि देखिए हमें अगर कोई प्रमुख सेनापति चुनना है तो कोई वरिष्ठ होने चाहिए जिनकी बातें सब सुने, तो इसीलिए हमें विराट नरेश को प्रमुख सेनापति बनाना चाहिए, क्योंकि हम उनके ऋणी भी हैं। एक वर्ष तक उन्होंने हमें छुपा कर रखा, हमें आश्रय दिया, हम ऋणी हैं उनके, और वो बड़े भी हैं, तो उनको हमें बनाना चाहिए। तो नकुल ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अच्छा होगा अगर हम लोग द्रुपद महाराज को बनाएं। उसका कारण ये है कि द्रुपद हैं तो वो भी दोनों बराबर हैं युद्ध में, लेकिन द्रुपद द्रोणाचार्य के थोड़े दुश्मनी हैं, तो जरा और अच्छा होगा। तो ऐसे सब बातें चल रही थी, और फिर उस समय अर्जुन ने कहा कि ये तो ठीक है, ये लोग वरिष्ठ हैं और इनको बनाना अच्छा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि उम्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो अब दोनों ये बड़े योद्धा हैं, लेकिन अब इनकी उम्र हो चुकी है काफ़ी, इसीलिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो युवा भी हो लेकिन साथ साथ जो दिव्य अस्त्रों को चलाना जानता हो और जिसकी युद्ध कौशल में किसी को कोई संशय नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें दृष्टद्युम्न को बनाना चाहिए जो द्रुपद का पुत्र है, और उन्होंने कारण दिए क्यों बनाना चाहिए। उन्होंने कहा हमें इसलिए बनाना चाहिए कि पहली बात ये सारे दिव्यास्त्रों को चलाना जानता है, क्योंकि वो प्रकट ही दिव्यास्त्रों के साथ हुआ था। दृष्टद्युम्न का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं हुआ था, किसी माँ से उसने जन्म नहीं लिया था, वो अग्नि से प्रकट हुआ था, यज्ञ से। तो इसीलिए अर्जुन ने कहा कि वो तो हाथ में तलवार लेकर पैदा हुआ था। और दूसरा कारण अर्जुन ने कहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके विषय में पहले से घोषणा हो चुकी है कि ये द्रोणाचार्य का वध करेगा, ये सब जानते थे। तो अर्जुन कारण दे रहे थे कि क्यों हमें दृष्टद्युम्न को प्रमुख सेनापति बनाना चाहिए। पहला कारण, दिव्यास्त्रों को जानता है, इसका जन्म दिव्य है, साधारण जन्म नहीं हुआ इसका। दूसरा कारण, हम सब जानते हैं कि हमने सुना है, आकाशवाणी हुई है, घोषणाएं हुई हैं कि यही द्रोणाचार्य को मारेगा। और तीसरा कारण वो देते हैं, वो कहते हैं ये द्रोणाचार्य को मारेगा ये तो ठीक है, और ये द्रोणाचार्य का ही शिष्य है। धृष्टद्युम्न का जब जन्म हुआ, द्रुपद महाराज ने, ये कथा आप सब जानते हैं, द्रुपद को पांडवों ने हरा दिया, क्योंकि जब पांडवों को और कौरवों को सिखा दिया द्रोणाचार्य ने, तो उन्होंने कहा मुझे दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा, तो क्या चाहिए, द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आओ। बंदी बनाना कोई साधारण बात नहीं थी, बंदी बनाना मतलब उनकी पूरी सेना को हरा कर लेकर आना। तो दुर्योधन इत्यादि ने कहा अरे कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। वो चले गए, सब हार कर वापस आ गए, भागना पड़ा उनको। फिर पांडव गए अकेले, पांच पांडव, और बंदी बना कर ले आए। तो खैर ये अपमान हुआ था द्रुपद का, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको मित्र बनाया। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारे पास एक समय आया था मित्र के रूप में, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, आधा राज्य तुम्हारा। तो बड़ा अपमान हुआ था, उन्होंने जाकर तपस्या की, यज्ञ किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो यज्ञ से दृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, और द्रुपद ने उससे कहा जाओ द्रोणाचार्य से सीख कर आओ। द्रोणाचार्य के पास दृष्टद्युम्न आए, द्रोणाचार्य बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इसका जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, लेकिन उन्होंने सब सिखाया उसको, ठीक है सीखो। मूर्खता लगती है ना, कोई व्यक्ति आपको बंदूक मारने वाला है और आप ही उसे सिखा रहे बंदूक कैसे चलाना है, ताकि आगे चलकर मुझे मारो। तीर चलाना वही सिखा रहे कैसे चलाना है, ताकि आगे चलकर मुझे मारो। विचित्र बात, विचित्र नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान पर विश्वास रखते हैं, और वो जानते हैं कि जो होना है वो तो वैसे भी होगा, उससे क्या घबराना। कोई होनी को टाल नहीं सकता, हमारे जीवन में जो होना है वैसे भी होना, हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें मिलना है वो तो मिलेगा ही। इसलिए भगवान के भक्त उसकी चिंता नहीं करते हैं, उसको बदलने का प्रयास नहीं करते। द्रोणाचार्य ने यही सोचा कि अगर ये मुझे मारने वाला है तो वैसे भी मारेगा, क्यों नहीं मैं इसे सिखाऊं, मेरे पास ये आया है मैं इसे सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊं। तो अर्जुन कहते हैं द्रोणाचार्य का शिष्य है, द्रोणाचार्य को मारने वाला है, इसका जन्म दिव्य है, और वैसे भी हम सब इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो फिर भीम ने भी समर्थन किया, और फिर युधिष्ठिर ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण ने भी समर्थन किया कि ठीक है। कृष्ण ने कहा क्योंकि यही है जो युद्ध के अंत तक जीवित रहेगा, इसीलिए इसे बनाना चाहिए। और आप जानते हैं 18 दिनों में दृष्टद्युम्न मरे नहीं थे, दृष्टद्युम्न को युद्ध के बाद मारा गया, अश्वत्थामा ने मारा था युद्ध के बाद, तो इसीलिए युद्ध में वो मरे नहीं थे। तो श्री कृष्ण ने कहा हाँ ये लंबे समय तक युद्ध के अंत तक ये रहेगा, इसीलिए इसको प्रमुख सेनापति बनाना चाहिए। तो धृष्टद्युम्न को बनाया गया था प्रमुख सेनापति और उधर भीष्म को, और अब दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। युद्ध का समय आया है। तो भगवत गीता भगवान प्रकट करने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन घबरा गए तो वर्णन करने लगे संजय कि जब दुर्योधन ने देखा घबरा कर भागा द्रोणाचार्य के पास, जाकर कहने लगा देखो इतनी बड़ी सेना, ये आपकी गलती है, आपके ही सारे शिष्य खड़े हैं सामने, धृष्टद्युम्न आपका शिष्य है, आपने गलती की उसको सिखाकर, लेकिन अब ये गलती मत कीजिएगा, हम लोग युद्ध में हैं। ये भाव था अर्जुन का कहने, दुर्योधन का कहने का, कि अब गलती करेंगे तो सब मारे जाएंगे, तो इसीलिए अब गलती मत कीजिएगा। तो पहले 11 श्लोकों में बड़ी अच्छी तरह से वो ये वर्णन करते हैं, और फिर वो वर्णन करते हैं कि उनकी सेना में कौन है और हमारी सेना में कौन है। तो जब अपनी सेना का वर्णन करने जाते, उनकी सेना का वर्णन करने में दो प्रमुख नाम लेते हैं, भीम अर्जुन, भीमा अर्जुन, तो भीम और अर्जुन उनमें है। अन्य योद्धाओं का नाम ज्यादा नहीं लिया, लेकिन प्रमुखतः भीम अर्जुन। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि अगर ये युद्ध में हारूंगा तो इन्हीं दोनों के कारण, अर्जुन युद्ध जीत सकता है और भीम मुझे मार सकता है। दुर्योधन को हारने की चिंता नहीं थी, लेकिन भीम के हाथों मरने से वो नहीं डरता था कि मैं मरूं ठीक है, लेकिन भीम के हाथ नहीं मरना चाहिए। युद्ध करना कोई चिंता नहीं, मैं युद्ध कर सकता हूं, लेकिन वो जानता था कि भीम और उसमें दोनों शक्तिशाली हैं, तो भीम भी जीत सकता है, दुर्योधन भी जीत सकता है, भीम भी उसको मार सकता है, दुर्योधन भी भीम को मार सकता है। लेकिन उसको डर ये था कि मैं भीम के हाथों मरना नहीं, इतना द्वेष था, कोई और मार दे मुझे चलेगा, भीम के हाथ नहीं मरना चाहता। तो इसीलिए भीम अर्जुन, और जब अपने योद्धाओं का वर्णन करने लगा तो अब उसके लिए दुविधा थी। भीष्म बड़े हैं, पहले उनका वर्णन करेगा तो द्रोणाचार्य थोड़ा नाराज हो सकते हैं। देखिए जब बात की जाए तो किसको पहले सम्मान देना है, इसमें बड़ा महत्व होता है, तो इसीलिए उसने पहले सम्मान दिया द्रोणाचार्य को। भवान भीष्मश्च, भवान मतलब आप हैं हमारी सेना में, भीष्म हैं, तो क्यों पहले भीष्म का नाम नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भीष्म क्षत्रिय हैं और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, अगर पहले द्रोणाचार्य का नाम लूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे भीष्म, लेकिन अगर पहले भीष्म का नाम ले लिया तो फिर द्रोणाचार्य बुरा मान सकते हैं, इसीलिए पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया। तो ऐसे उसने आकर बताया। तो पहले करीब 11 श्लोकों में ये कूटनीति दिखती है। फिर 12वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवद्गीता के पहले अध्याय में पांडवों के विजय के चिन्ह दिए गए हैं कि पांडव कैसे विजय होंगे, क्योंकि उसमें कहा गया है कि फिर भीष्म ने शंख बजाया, उसके बाद अलग अलग शंख बजे, कृष्ण ने बजाया, अर्जुन ने बजाया, युधिष्ठिर ने इत्यादि सब ने शंख बजाया, और जब पांडवों ने शंख बजाए तो भगवद्गीता में वर्णन किया गया है कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो यहां इन श्लोकों में 12 से लेकर 20 तक पांडवों की विजय के चिन्ह दिए गए हैं। तो क्या क्या चिन्ह थे पांडवों की विजय के? सबसे पहला और प्रमुख चिन्ह था श्री कृष्ण की उपस्थिति। इसीलिए भगवद्गीता के अंत में संजय यही कहेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूते ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। कहेंगे जहां श्री कृष्ण है वहां तो विजय निश्चित है। तो इसीलिए पहला चिन्ह पांडवों की विजय का था कि श्री कृष्ण उपस्थित थे। जहां श्री कृष्ण है वहां पराजय हो ही नहीं सकती, ये विश्वास हमें होना चाहिए, और यही विश्वास शरणागति का लक्षण है। अगर हमें पूर्ण विश्वास नहीं है श्री कृष्ण पर, या इस बात पर कि जहां श्री कृष्ण है वहां पराजय नहीं हो सकती, अगर ये विश्वास नहीं है तो हम शरणागति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और विजय विश्वास से आती है, अगर हमें विश्वास है कि श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे तो वो रक्षा करेंगे। और इसीलिए शरणागति बहुत आवश्यक है, लेकिन शरणागति के लिए विश्वास आवश्यक है। कैसा विश्वास? 6 लक्षण शरणागति के दिए गए हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रते भरन अवश्य राखीबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल कार्य। बहुत सुंदर वर्णन है 6 चीजों का। जैसे हमें क्या 6 चीजें करनी है, कैसे पता चलेगा कि हम समर्पण कर सकते हैं? सबसे पहला, भक्ति के जो अनुकूल कार्य हैं उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं उसको त्याग देना। देखिए, हम शरणागति चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, बारंबार अपने आप को हमें ये याद दिलाना चाहिए क्या है शरणागति। हम भक्त बन जाते हैं, हम ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाते हैं, हम बहुत वर्षों से रहकर वरिष्ठ भक्त बन जाते हैं, लेकिन इन लक्षणों को भूल जाते हैं। शरणागति क्या है? शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वचनम्। भक्तिविनोद ठाकुर शरणागति में इस भजन, इन्हीं 6 चीजों को भजन के रूप में कहते हैं। तो बताते हैं कि जो भी अनुकूल हो भक्ति को, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्जुन के लिए अपने गुरुजनों का वध करना भक्ति के लिए अनुकूल था, इसीलिए उसने स्वीकार किया। वैसे जब देखा जाए तो धर्म के अनुसार तो ठीक नहीं है, लेकिन सच्चा धर्म है भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि भगवान धर्म को बनाते हैं। धर्म हम नहीं बना सकते, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जब हम धर्म नहीं बना सकते तो धर्म का उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, वो सच्चा धर्म है। अगर भगवान चाहते हैं द्रोणाचार्य को मरना है, भीष्म को मरना है, वो धर्म है, वो अधर्म नहीं हो सकता। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कर्ण को मारो, लोग कहते हैं अधर्म किया अर्जुन ने। कर्ण के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कर्ण रथ पर नहीं था, रथ के नीचे था, पहिए को निकाल रहा था। अर्जुन ने अधर्म किया, कोई अधर्म नहीं है। अर्जुन रुक गया था, भगवान ने आदेश दिया मारो, वो धर्म है। ये कभी कभी हमारे लिए दुविधा होती है समझना कि कैसे धर्म हो सकता है और क्या भगवान अधर्म कर सकते हैं। कर्ण को मारना अधर्म है नैतिकता की दृष्टि से, तो भगवान ने क्यों अधर्म करने के लिए अर्जुन को कहा? और फिर ये अधर्म को कहना, क्या ये धर्म है? क्या भगवान कोई भी अधर्म की बात कहेंगे वो धर्म होगा? पहली चीज, भगवान कभी अधर्म कहते ही नहीं है। भगवान के मुख से जो निकला वो वेद है, शास्त्र है, सत्य है। तो जब अर्जुन मार रहा है कर्ण को, जब हम लोग उस प्रसंग पर आएंगे तो बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे कि भगवान ने प्रमाण दिया कि कर्ण को इस तरह से मारना धर्म है। तो इसीलिए अनुकूल, जो भी अनुकूल हो भक्ति के लिए, एक ही चीज भक्ति के लिए जो अनुकूल हो उसको स्वीकार करना है, प्रतिकूलस्य वर्जनम। और जो प्रतिकूल हो, भक्ति के विरोधी हो, भक्ति में बाधाएं हो, उनको त्याग देना। कभी कभी जब हम लोग भक्ति करने लगते हैं, साथ में रहते हैं, तो हमें लगता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, लेकिन अगर ये हमारी भक्ति में बाधा है, त्याग देना चाहिए ऐसी मानसिकता को, क्योंकि हम कभी हर समय सही नहीं हो सकते। इसीलिए भक्ति का मार्ग है अधिकारियों के, वरिष्ठों के, गुरुजनों के अधीन रहना, ये भक्ति का मार्ग है। अपने मन से अगर कोई भगवान की भी भक्ति करता है तो केवल उत्पात करता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना ऐकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। हरि भक्ति है, भगवान की भक्ति है, लेकिन उत्पात मचाती है समाज में। क्यों? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना, विधि के बिना की जाती है। और विधि क्या है इन सब की? एक गुरु की, एक भक्त का आश्रय लेना, उसके बताए मार्ग पर चलना सबसे सुरक्षित मार्ग है हमारे लिए। इसीलिए भक्ति में हमें अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी बुद्धि को त्याग कर, क्योंकि हमारी बुद्धि दूषित है, हमारा मन दूषित है, हमारा अहंकार दूषित है, मिथ्या है अहंकार। एक भक्त की शरण लेना चाहिए, भगवान की शरण लेने का ये मार्ग है कि हम भक्त की शरण लें। तो इसीलिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करें, जो प्रतिकूल है उसको त्याग दें। और फिर अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास हृदय में हो कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, वो रक्षक हैं हमारे। जिस व्यक्ति को ये विश्वास है उसके लिए बाध्य हो जाते हैं कृष्ण उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, जैसे हम लोगों को पूर्ण विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि कुछ भी हो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, जीवन समर्पण करने के बाद भी ये विश्वास नहीं आता, हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने कुछ धन पर विश्वास करते हैं, अपनी कुछ संपत्ति पर, अपने कुछ प्रियजनों पर विश्वास करते हैं कि ये मेरी रक्षा करेगा, आ नहीं सकता वो विश्वास जब तक हम इन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा धन, आत्मसैन्यस्य सदस्वपि तेषां प्रवत्त निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। भागवत में कहा गया कि ये मूर्ख व्यक्ति है जो देख कर भी नहीं देख रहा। क्या सोचता है वो कि ये जो बच्चे हैं मेरे, पुत्रदार जो पुत्र हैं, पत्नी हैं इत्यादि, ये मेरे सैनिक की तरह हैं, आत्मसैन्यस्य, क्यों मेरी रक्षा करेंगे? पश्यन्नपि न पश्यति, मूर्ख है, कृष्ण पर विश्वास नहीं। इसलिए विश्वास कृष्ण पर होना चाहिए, ये शरणागति है कि हमें पूर्ण विश्वास हो कि जिसने ये जन्म दिया है, जिसने ये शरीर दिया है, जिसने ये जीवन दिया है, जिसने ये भक्ति दी है, वही हमको संभालेगा। ये विश्वास चाहिए, और ये बड़ा तीव्र और गहरा विश्वास होना चाहिए। भक्ति में प्रगति के लिए अनिवार्य है ये विश्वास होना, कृष्ण रक्षा करेंगे। और ऐसा व्यक्ति निर्भय हो सकता है जो ये विश्वास कर ले कि कृष्ण हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर क्षण मेरी रक्षा करेंगे। उस व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं है इस जगत का, वो किसी से भयभीत नहीं होगा, कृष्ण रक्षा करेंगे। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि हमारी रक्षा इस जगत के लोग करेंगे, मेरे प्रियजन करेंगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, ये मेरी रक्षा करेंगे, और कौन है मेरा? व्यक्ति सोचता है इस जगत में और कौन है मेरा, यही तो लोग हैं, इनके लिए जीवन देना है, रक्षा नहीं कर पाते। तो इसीलिए तीसरा लक्षण शरणागति का है कि हम ये माने कि श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास अवश्य रक्षा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो क्या कारण है कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे? अगर हम पूर्ण समर्पण करते हैं उनको, अगर हम उनके पास जाते हैं, अगर हम उन पर आश्रित हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, या बाहर गाय आप देख सकते हैं, गाय बैठी, पहले गाय नहीं थी, कुछ दिनों से आप गाय देख रहे होंगे, तो गाय यहाँ पर बड़ी सुरक्षित है, मंदिर में आई है, मंदिर के लोग उसको बड़ा बड़ा ध्यान रख रहे हैं। यही गाय बाहर होती तो ध्यान नहीं रखते थे, रोज जाकर नहीं देखते कि उसने खाया या नहीं खाया, वो सोई कि नहीं सोई, धूप में बैठी है या छांव में बैठी, कभी देखा नहीं हम लोगों ने। लेकिन क्योंकि इसने मंदिर का आश्रय ले लिया, मंदिर के सब लोग उसका ध्यान कर रहे हैं, छाव छाव है कि नहीं, खाने को मिला कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, दर्द हो रहा है कि नहीं, कुछ तकलीफ है कि नहीं। दिन में चार बार जाकर हर व्यक्ति देखता है ठीक है कि नहीं। क्यों? उसने आश्रय ले लिया, उसको विश्वास है गाय को कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी रक्षा करेंगे। और क्योंकि उसने आश्रय लिया है, हम सब उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर कल को कोई उसको तकलीफ हो तो सारे जाकर उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन यही गाय अगर बाहर है, बाहर है मतलब उसको विश्वास नहीं है कि मंदिर रक्षा करेगा, तब मंदिर वाले रक्षा नहीं करते। तो आप सोचिए कि मंदिर के लोग कौन हैं? साधारण जीव है। एक साधारण जीव भी जब कोई दूसरा जीव उसका आश्रय लेता है, वो अपनी पूरी शक्ति से उसकी रक्षा करता है, तो क्या परम जीव, परम सत्य श्री कृष्ण वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे अगर हम उनका आश्रय लेंगे? हम मंदिर के लोग बाध्य हैं उसकी रक्षा करने के लिए, हमारा कोई संबंध नहीं है उससे। कुछ दिनों पहले केवल हम शायद देखते होंगे उसको, आते थे चले जाते थे, लेकिन आज हम लोग बाध्य हैं उसकी रक्षा करने के लिए। क्यों? उसने आश्रय लिया। इसी तरह अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो कृष्ण बाध्य हो जाते हैं हमारी रक्षा करने के। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के सामने झुक जाता है, कृष्ण उसके लिए खड़े हो जाते हैं। और जब कृष्ण आपके लिए खड़े हो जाएं, तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए समर्पण करना है तो कृष्ण को करना चाहिए, भक्ति करनी है तो कृष्ण की करनी चाहिए, विश्वास करना है तो कृष्ण पर करिए, वो कभी विश्वास को तोड़ते नहीं है। इस जगत में हमने कई लोगों पर विश्वास किया और वो सब विश्वास को तोड़ते हैं। कृष्ण एक ऐसे हैं जो आज ही नहीं, कई वर्षों से नहीं, जन्म जन्मांतर से उस विश्वास को बनाए हुए हैं। मूर्खता तो हमारी है कि हम उन पर वो विश्वास दिखला नहीं रहे। इसलिए ये शरणागति के लक्षण हैं कि हम ये उन चीज़ों को करें जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं, हम उन चीज़ों को त्याग दें जो भक्ति के विरोधी या प्रतिकूल हैं या बाधाएं हैं, और साथ ही साथ कृष्ण पर पूरा विश्वास हो। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पाला। और इसके अलावा तीन और लक्षण हैं शरणागति के, जिनको अगले सोमवार को हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। समय काफ़ी हुआ है, फिर भी अगर किसी के एकाध कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो कीर्तन और भगवान के दर्शन अभी होंगे। कोई प्रश्न? यस। प्रतिकूल परिस्थिति, बहुत अच्छा। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा मन और बुद्धि हमें साथ नहीं देता है, अर्थात हम जानते हैं कि ये भक्ति के लिए सही नहीं है, फिर भी हम उसको कर बैठते हैं, या हम जानते हैं कि ये भक्ति के लिए अच्छा है लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारा मन हमें करने नहीं देता या बुद्धि करने नहीं देती, आड़े आ जाती, तो उसको कैसे संभालना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। मन और बुद्धि को हमें भक्ति के द्वारा, जप और श्रवण के द्वारा पहले मजबूत बनाना चाहिए। मन और बुद्धि क्यों आड़े आते हैं, क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि हमने मन में उस प्रकार के इम्प्रेशंस, उस प्रकार के छाप डाल रखी है कि जो हमेशा विरोध करते हैं अच्छी चीज़ों का। उसी को हम अगर मन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करें, अर्थात हम सारा बदलाव लाएं अपने जीवन में, पहली चीज़ हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते हैं, जो करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मन पर प्रभाव करती हैं। तो हमें ये अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना। अगर मन को मजबूत करना है तो क्या आप देख रहे हैं, कैन वेट, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, किसके साथ आप हैं, इन सारी चीजों को बदलाव करें जो भक्ति के अनुकूल हों, तब मन स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए मन को और बुद्धि को, तो बुद्धि को तीव्र करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, भागवत इत्यादि, जिससे बुद्धि मजबूत होती, कृष्ण की ओर जाती है। और मन को मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें, तो हमारा जो आहार हो कृष्ण भावना भावित हो, हमारा जिस चीज को हम देख रहे हैं उससे कृष्ण का स्मरण हो सके, जो सुन रहे हैं वो कृष्ण का स्मरण दिला सके, जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं, तो ऐसे मन को हमें मजबूत बनाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब ऐसी स्थितियां आएंगी जो अनुकूल और प्रतिकूल हैं, तो उसमें मन और बुद्धि साथ देगा। ठीक है, तो अभी कीर्तन करेंगे और भगवान के दर्शन।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
पता है ना वो तो शिव कृष्ण प्रभु मेमोरी कार्ड देने भूल गए
इसमें
रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हो नहीं रहा है फिर सेटिंग देखा कुछ गड़बड़ हो गया फिर सेटिंग में देखा तो वो मेमोरी का स्टेटस नहीं दिखा रहा है फिर इसको खोल के देखा तो मेमोरी नहीं फैन क्यों बंद कर दिया बोले फैन क्यों बंद कर दिया दिया थोड़ी जल रहा था मेरा जी फैन चल नहीं रहा था और हम यहाँ पे फैन फैन बंद किया था ना कल ये वो उसमें लगने दीजिए उसको से राउंड राउंड करके उसको लूज करके स्ट्रेट कर दीजिए को ना लेके जाऊँ मैं लेके जाता हूँ मैं उसको लेके जाता हूँ उसको ना ये निकल दीजिए ये निकल दीजिए निकल के अंदर उसको होल्ड करके अंदर रख दीजिए क्या मैं हर चीज़ सेटिंग करके देख चुका फिर फाइनल में उसको खोल के नीचे ही ले आया देखता और क्या इश्यू हो सकता है प्रभु गिव मी गिव इन माय कैमरा वेयर इज दैट मेमोरी कार्ड आई एम सर्चिंग व्हाट इज द सेटिंग चेंजेस हियर सेटिंग्स फाइनली इट्स नो मेमोरी कार्ड इज नॉट देयर आई सॉर्ट सेटिंग एंड मॉडिफाई रीसेट अगेन एंड अगेन रिमूव द बैटरी फाइनली आई हैव कैमरा स्पॉइल देन आई रिमूव फ्रॉम स्टैंड एंड चेक द मेमोरी कार्ड इज नॉट देयर दैट्स वेयर इज दैट ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टिल